Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember, listeners, that we do not address company-specific queries. You can call us with your queries on 2331-4444 and 2342-1050. These are Delhi numbers, so for those of you who are calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और व्यापार जगत की हलचलों के बारे में जानकारी। आज सोमवार है और आप अपनी आर्थिक जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए आप हमें 2331-4444 और दूसरे नंबर 2342-1050 पर कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। श्रोताओं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक अमन अग्रवाल। अमन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार जी।
और श्रोताओं, सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अनुभा।
थैंक यू निखिल। Indian benchmark indices shed more than 2.5%. Sensex was down 2,222 points. Nifty closed at 24,055. Asian indices experienced major loss. Japan's Nikkei tanked 14.15%. South Korea's Kospi declined 9.61%. And oil futures extend losses in a volatile session on Monday. Brent crude dropped 1.8% to $75.38 a barrel.
घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में 2.5% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स 2,222 अंक टूटा और निफ्टी 24,055 पर बंद। प्रमुख एशियाई सूचकांकों में भारी नुकसान देखने को मिला। जापान का निक्केई 14.15% टूटा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 9.61% लुढ़का। अस्थिर सत्र के चलते तेल के वायदा कारोबार में घाटा देखने को मिला और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 1.8% गिरकर $75.38 प्रति बैरल पर रही। और श्रोताओं, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। घरेलू बेंचमार्क सूचकांकों में आज 2.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2,222 अंक यानी 2.7% गिरकर 78,759 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 662 अंक यानी 2.6% के नुकसान के साथ 24,055 पर रहा। बीएसई के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 3.5% कमजोर हुआ और स्मॉल कैप भी लगभग 4% टूट गया। सेंसेक्स में 30 में से 28 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज की गई।
एंड इन द मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय आवर फर्स्ट कॉलर ऑफ द डे, दैट्स सौरभ फ्रॉम प्रयागराज। बट बिफोर वी टेक योर क्वेरी सौरभ, लेट मी गिव यू डिटेल details of what happened in the stock markets and how the various companies behaved. Indian benchmark indices shed more than 2.5% today. At close, the Sensex was down 2,222 points or 2.7%. at 78,759, and the Nifty was down 662 points or 2.6% to close at 24,055. In the broader market at the BSE, the mid-cap index shed 3.5% and the small-cap index fell 4%. 28 out of 30 companies registered losses in the Sensex index. The major laggards were Tata Motors, which lost 7.32%, Adani Ports lost 5.93%, and Tata Steel lost 5.31%. Conversely, the top gainers today were Hindustan Liver, which gained 0.83%, and Nestle, which gained 0.61%. In sectoral indices at the BSE, 20 out of 20 sectors locked losses. The major laggards were metal sector 4.73% loss, services 4.56% loss, and utilities 4.3% loss. The overall market breadth at the BSE was negative. Of the 4,189 companies, shares of 664 companies advanced, while shares of 3,414 companies declined, and shares of 111 companies remained unchanged. And now let's take the call from Saurabh, who's calling us from Prayagraj. Saurabh, welcome to the program. Please ask a question. Looks like Saurabh is not with us due to some technical problem. And now let's go to Thane, where Gurunath is with us. Gurunath, welcome to the program. Please ask your question.
Ji, ma'am, namaste.
Namaste, apna sawal puchhe.
Namaskar. Aman sir ko bhi namaste.
Namaskar.
Ji, sir, mera question hai. Sir, ye jo matlab aaj jo NSE aur BSE jo निफ्टी और सेंसेक्स में 2500 अंकों की जो गिरावट देखी गई और निफ्टी में भी 700 के ऊपर गिरावट देखी गई और संस्थागत में निवेशकों ने जो दिखवाली की है तो इसके पीछे क्या सर ये जो अमेरिका में जो आर्थिक मंदी के वजह से या जो ये जियो पॉलिटिक्स के वजह से जो इसराइल और जो ईरान का जो वॉर वॉर जो है उसके वजह से मतलब क्या रीजन हो सकता है सर? थैंक यू.
देखिए जी, ऐसा है जो हिंदुस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट देखी गई, यूरोप की देखें, अमेरिका की देखें, करीबन 2.5% से लेके 7.5% के बीच में फॉल हुआ है. जापान की निकी में तो करीबन 13% 12.5% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला है और वो ऑलमोस्ट इतना है जितना ब्लैक मंडे जिसे हम कहा जाता है 1987 में अमेरिका में हुआ, उतना जितना फॉल देखने को मिला है निकी के अंदर. तो एक उसका जो रिपरकशन इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट जैसे हम कहते हैं, सागर की समुद्र होती हैं जो फैलती हैं, ऐसे रिपल इफेक्ट उसका हिंदुस्तान में भी हमें थोड़ा देखने को मिला है. क्योंकि जो हाई नेटवर्क क्लाइंट होते हैं या जो FII होती हैं वो मेजरली इम्पैक्ट होती हैं और फिर वहां से फिर उनका विड्रॉल्स भी शुरू होते हैं ताकि वो कुछ बैलेंस शीट अपनी ठीक कर सके उस समय के लिए. तो इसलिए कोई मेजर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है ना खराबी हुई है जिसकी वजह से ये फॉल हमें देखने को मिला है. एक जो जरूर देखा जा रहा है कि थोड़ा हेल्दी करेक्शन भी इसे हम माने, बिकॉज पिछले कुछ महीनों से लगातार हम चढ़ते ही चले जा रहे थे. थोड़ा बहुत आता था फॉल, पर ज्यादातर हम देखें तो ओवरऑल ग्रोथ रही है. तो एक थोड़ा मार्केट करेक्शन है. बाकी और सेंटिमेंट, मेजर सेंटिमेंट जो है यूएस का भी है, यूरोप का भी है, और काफी सारी इकोनॉमीज यूरोप की और यूएस की रिसेशन की तरफ प्रोग्रेस कर रही है फरवरी 2024 से, तो उसका एक नेचुरली आ रहा है आंकड़ा. और जो फेड का कंसिस्टेंट फेलियर हो रहा है देखने में, कंट्रोल करने में, एक कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी होती है जो रिवर्स कैरी फॉरवर्ड जो जापान येन के अंदर हो रहा है, उसका भी कुछ देखने में आया इम्पैक्ट जो निकी के फॉल में माना जा रहा है कि मेजर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है.
और हमारे अगले श्रोता है दिल्ली से RS दहिया जी. दहिया जी, आपका प्रश्न पूछिए.
सर नमस्कार.
नमस्कार, प्रश्न
दहिया सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है के कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल ऑफ बाई ऑन डिप्स, इज इट द राइट टाइम टू बाई गुड शेयर्स और इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड सिंस देयर इज अ बिग करेक्शन इन द मार्केट?
आई वुड सजेस्ट दैट यू नीड टू होल्ड ऑन. दिस करेक्शन विल गो ऑन फॉर कपल ऑफ डेज नाउ, स्पेसिफिकली बिकॉज जो ये जो फॉल देखा गया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो जो उसका टेक्निकल इम्पैक्ट है ग्लोबली फील किया गया है. इट इज नॉट कि एक रीजन की मार्केट में, जनरली क्या होता है कि यूरोप का थोड़ा फॉल किया या यू नो साउथ एशिया का फॉल किया या जापान का फॉल किया या अमेरिका का फॉल किया, कुछ मार्केट्स में फॉल हुआ, कुछ मार्केट्स में राइज हुआ. बट यहाँ पे हमने देखा गया है कि करीबन 2.5 से लेकर 7.5% के बीच में अलग अलग मार्केट्स ने फॉल देखा है आज के दिन ही, और जापान में सबसे ज्यादा हुआ है, अमरीका का भी काफी रहा है. तो इस वजह से ये जो है इसको अभी आगे भी एक दो दिन कंटिन्यू ट्रेंड रहेगा. ये इंडिया पे मेजर इम्पैक्ट नहीं होने की उम्मीद, बिकॉज इंडिया के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं. कंपनीज के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें वो पॉजिटिव रहे हैं, जितने भी चाहे बैंक्स हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी कंपनीज हों, चाहे वो जो मोबाइल कंपनीज होती हैं वो हों, टायर कंपनीज हों, जितनी भी कंपनीज इंडिया इन कॉरपोरेशन में है उनके क्वार्टर वन रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ रहे हैं, और बजट भी अभी आया था उसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का वेव दिया रहा. तो मेरे विचार में ये जो है फंडामेंटल्स ना इम्पैक्ट करके इंटरनेशनल वेव की वजह से आ रही है, पर इनका इम्पैक्ट कुछ दिन और रहेगा. थोड़े दिन और वेट करें फिर आप जरूर खरीद सकते हैं.
एंड नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर. ही इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, दैट्स रंजन कुमार. रंजन, वेलकम टू मार्केट मंत्रो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
हेलो
लिसन मी मैम
जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछें।
मैम मैं दिल्ली से हूँ, मैं रेगुलर लिसनर हूँ मार्केट मंत्रा का, एक सर्विस क्लास पर्सन हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकूँ, बट जस्ट मैं जानना चाहूंगा बेसिक थिंग फॉर ए पर्सन लाइक मी, लाइक जो सर्विस क्लास के हैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, जो जानना चाहिए कि कब तरह का मेजर फॉल होता है, कैसे समझ में आएगा, सो दैट वी कैन टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन इन एडवांस। थैंक यू।
बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए पहली बात तो कोई भी मार्केट में जब फॉल होता है उसके डायरेक्ट लिंक्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट लिंक्स होते हैं कि किस वजह से मार्केट के अंदर फॉल हुआ, कोई शेयर्स जो लिस्टेड हैं कंपनीज के उसमें कोई डिबैकल आया, कोई फ्रॉड किसी कंपनी मेजर शेयर जो ट्रेड होते हैं उसमें से किसी कंपनी का फ्रॉड हुआ गया, या मेजर लॉस हुआ, या बैंकरप्सी फाइल हुई, इस टाइप के जब इंसिडेंसेस होते हैं तो इंटरनल इंसिडेंसेस होते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्लगिशनेस आती है कभी कभी उसके भी इम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चला जाए जैसे अमरीका में हो रहा है इस समय, या फिर जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाए, उनका कंट्रोल करने में मुश्किल आ रहा हो सेंट्रल बैंक को, और जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाए, तो इनका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, पर हिंदुस्तान के अंदर का इम्पैक्ट नहीं होगा, बाहर के उसका होगा। हिंदुस्तान का इसलिए नहीं होगा बिकॉज अमेरिका के अंदर इस समय जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जॉब लॉसेज हो रहे हैं मेजरली, और जो रीगेन नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन है वो काफी तीव्र गति से है, तो ज्यादातर लोग जो है अपना 70-80% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट में रखते हैं अमेरिका जैसे देश के अंदर। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, जैसे आपने कहा आप सैलरी क्लास है, आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होती है, गोल्ड में रखते हैं, रियल एस्टेट में रखते हैं, सेविंग्स में रखते हैं, कुछ पैसा बचाने की इच्छा भी होती है कि कल को निवेश करने के लिए हम रखें, तो इससे जो हमारे स्टॉक मार्केट में होता है वो 5-6-7% से ज्यादा हम कभी भी कोई भी घर वाला या इंडिविजुअल नॉर्मली जो इंडिविजुअल होते हैं मासेस वो इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसलिए वो रिस्क फैक्टर नहीं है हिंदुस्तान के साथ। डायरेक्ट इम्पैक्ट देखना बहुत जरूरी है, इनडायरेक्ट जो होती है जैसे इन्फ्लुएंजा होता है तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में भी न्यूज इम्पैक्ट करती है, जैसे आज देखने को मिला है।
और अगली खबर पर आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रूपया 84.05 रूपये पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.6% नीचे रहकर 102.61 पर रहा। और एशिया यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो एशिया के 5 प्रमुख बाजारों में आज भारी नुकसान देखने को मिला। जापान के निक्केई में 14.15% की भारी गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी 9.61% टूटा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 4.25% की गिरावट देखी गई। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.56% और हांगकांग का हैंगसेंग 1.48% नीचे रहा। तीनों प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज नकारात्मक थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 2.8% के नुकसान में रहा। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैग भी 2.4% नीचे गिरकर कारोबार कर रहे थे। इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से योगेश शर्मा। योगेश जी प्रश्न पूछिए आपका।
जी नमस्कार आप सभी को।
जी नमस्कार।
मेरे सब के अक्सर देखा जाए मार्केट में गिरावट होती है तो उसको क्रैश ना बोल के करेक्शन कहा जाता है, तो एक रिटेल निवेशक कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये क्रैश है या करेक्शन है?
बिल्कुल आपने ठीक कहा। ऐसा है जनाब कि जब हम क्रैश की बात करते हैं तो एक तो मेजर जो फॉल होता है जैसे आज भी हमें देखने को मिला, काफी मेजर फॉल है, पर ये अगर मेजर फॉल एक नॉर्मल ट्रेंड मार्केट का चल रहा हो, जैसे एक हार्ट बीट चलती है एक इंसान की, आपने पिक्चरों में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, दिखाते हैं पिक्चर हार्ट बीट की, उस तरीके से चल रही है, हल्की हल्की ऊपर हुई हल्की नीचे हुई, पर अगर बहुत तेजी से ऊपर चलती जा रही है और उसके बाद एकदम से सडन फॉल होता है तो उसको हम एकदम से क्रैश भी कहते हैं, तो ये डेफिनेशन क्रैश की गई है। पर जैसे मैंने आपको कहा कि जो हिंदुस्तान में है जो पैरामीटर्स हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात है, इंडिया के जितने पैरामीटर्स हैं या इंडियन इनकॉर्पोरेशन के जितने पैरामीटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। स्टॉक मार्केट के पैरामीटर्स देखें वो भी पॉजिटिव हैं, उनमें भी कोई नेगेटिव नहीं है, कोई ऐसा फ्रॉड का या स्कैम का या नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट नहीं है डोमेस्टिकली जो इंटरनली, बिकॉज हिंदुस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनीज ही लिस्टेड हैं, वो इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सचेंजेस नहीं है जैसे कि निक्की हो या डाउ जोन्स हो या नैसडैक हो या NYSE हो, इस टाइप के जो एक्सचेंजेस हैं, या LSE हो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज हो, इस तरीके जो एक्सचेंजेस हैं वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से कंपनियां लिस्टेड होती हैं तो उनका इम्पैक्ट वहां से भी आता है, पर क्योंकि हमारा अपना ही इंटरनल है इसलिए इंटरनल इम्पैक्ट का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो है और करेक्शन की प्रूफ दे रहा हूँ। अगर ये जैसे जापान में हुआ वहां पे क्रैश है, जैसे और कुछ देशों में यूरोप में भी हमें देखने को ना वहां पे इतना क्रैश नहीं है, पर अमरीका के अंदर उसको क्रैश माना जा रहा है 3% के आसपास जो हुआ है। तो इसलिए वहां पे क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिल रहा है तो वो क्रैश डिफाइन किया जा रहा है। यहां पे क्योंकि एक इन्फ्लुएंजा इफेक्ट जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से और थोड़ा एफआईआई के विड्रॉल की वजह से देखा जा रहा है, इसलिए इसको क्रैश नहीं माना जा रहा है।
एंड नाउ आवर नेक्स्ट कॉलर इज ऑनलाइन, दैट्स मिस्टर अतनु साहा फ्रॉम कोलकाता। मिस्टर साहा, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी डिफाइन ए हेल्दी करेक्शन इनसाइड स्टॉक मार्केट, एंड माय सेकंड वन इज व्हाई आवर ऑप्शन पेंशन स्कीम इज पॉपुलर नाउ, आई एम राइट टाइप इंस्ट्रूमेंट।
एक बार रिपीट करेंगे बिकॉज मेरे को आपके कुछ वर्ड्स
यस सर आई एम गोइंग टू रिपीट सर। व्हाई हाउ डू वी डिफाइन ए हेल्दी करेक्शन इनसाइड ए स्टॉक मार्केट, एंड सेकेंड क्वेश्चन मैटर ऑफ ऑप्शन पेंशन स्कीम व्हाई इज इट पॉपुलर नाउ।
पहला जो प्रश्न आपका है वो करेक्शन के ऊपर है कि करेक्शन, जैसे मैंने पिछला प्रश्न भी आंसर किया अभी जो क्रैश की बात था और करेक्शन की बात है, ये बड़ा फाइन डेफिनेशन होता है करेक्शन में और क्रैश के अंदर। जैसे मैंने कहा क्रैश जो होता है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से मेजरली होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट कर सकते हैं, जैसे इस समय बांग्लादेश की इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहे हैं, वो अभी क्यों हुआ हुआ है, एक तरह से मार्केट क्रैश कर सकती है, वहां के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बाहर निकल गए हैं, रिजाइन भी कर दी है, तो वहां पर एग्जैक्टली कहा जाता है, बट इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं हुई इसलिए क्रैश नहीं, करेक्शन इसलिए कहा जा रहा है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा चुकी है और उसके अंदर कुछ थोड़ा स्थिरता लानी जरूरी है, थोड़ा गिरावट आनी जरूरी है, इसलिए हम उसको करेक्शन की तरह लेके जाते हैं।
अमन जी का दूसरा सवाल था ऑप्शन पेंशन स्कीम कि ये क्या होती है,
क्या दोबारा बोलिए जरा,
ऑप्शन पेंशन के बारे में जानना चाह रहे थे वो,
इको के बारे में, आई एम सॉरी आई एम नॉट हैविंग एनी आइडिया।
जी अमन जी, अगर आज की गिरावट के बारे में हम बात करें तो हमने देखा कि वैश्विक रूप से ये गिरावट देखी गई है और भारतीय बाजार भी अच्छा खासा टूटा था, लेकिन इस गिरावट को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या इसके पीछे कहीं से भी कोई भारतीय कारण रहा है या सिर्फ ये ग्लोबली जो इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट पर हम उस संदर्भ में इसे देख सकते हैं, और निवेशकों को किस तरह का अनुमान रखना चाहिए इस मार्केट के बारे में फिलहाल अभी?
देखिए जी, जहां तक ये जो क्रैश देखा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर, जो फॉल देखा जा रहा है, हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना हुई है ना हो रही है जिसका इन क्रैश की तरफ आगाम जा रहा हो। दूसरा जो आपने बात की कि जो है इससे आगे निवेशकर जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे स्मॉल हो या लार्ज इन्वेस्टर्स हो, उनको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो इम्पैक्ट है कुछ दिन तक जरूर रहेगा और कुछ और फॉल होने की उम्मीद हो सकती है। वो इसलिए है क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिन फैक्टर्स की वजह से ये फॉल देखा गया है वो बहुत क्रिटिकल है। अमरीका के अंदर स्पेसिफिकली जो फॉल है वो जॉब लॉस और इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट पिछले 6 महीनों से चल रहा था, जो फेड कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उनको कहा जा रहा है कि रेट कट करें पर वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, और जो सीनियर मनी उन्होंने कोविड के टाइम से दिया लोगों को, पैसा बांटा मिठाइयों की तरह, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जापान के अंदर भी कुछ समय से देखेंगे 2-3 महीने से उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते जा रहे थे, वो इसलिए, और करेंसी रेट येन का भी रेट बढ़ता जा रहा था कैरी फॉरवर्ड रेट की वजह से, वो इसलिए बढ़ रहा था कि लोग जो है क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो है तो वहां से पैसा उठाते हैं फिर दूसरे निवेश मार्केट्स में लगाते हैं, तो इस वजह से जैपनीज येन भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। किसी भी देश के लिए कोई करेंसी एकदम से बढ़ना इतनी तेजी से अच्छा नहीं माना जाता है, और इसी वजह से जो है ये इम्पैक्ट एकदम से गायब नहीं हो सकता है, थोड़े टाइम रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रहेगा, इंडिया के ऊपर माइनर इम्पैक्ट रहेगा। इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारे क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आए हैं, इंडियन इकोनॉमी जो भारत सरकार की प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट अच्छी आई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रांग है हमारे, तो इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर मेरे विचार में कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट होने की जरूरत नहीं है। जरूर एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका थोड़ा विड्रॉल हमें अगले हफ्ते के अंदर देखने को मिलता है।
और अगली खबर पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अब देश के शीर्ष 3 निर्यातों में शामिल हो गया है। श्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए कहा है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिकी को देश की युवा शक्ति के नवाचारों से और भी बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत आने वाले समय में इस गति को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अमन जी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात के क्षेत्र में शीर्ष तीन निर्यातों में शामिल हो गया, एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है तमाम नेगेटिव खबरों के बीच में जो हम देख रहे हैं।
नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की आपने बात करी है इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम हर एक क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखा रहे हैं, प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर फॉल हो या कोई नेगेटिव फीचर आए या इसका कोई इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट हो। फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है विश्व के अंदर इस समय जहां पे हमें ग्रोथ कंटिन्यूअसली विटनेस करने को मिल रही है कोविड के बाद। ये ऐसा देश कोई भी नहीं इस समय है। इवन चाइना, जो हमारे साथ बहुत अच्छे से तेजी से चल रहा है और ग्रोथ में काफी अच्छा है वो भी विश्व के अंदर, उसमें भी गिरावट हमें देखने को काफी हद तक मिली है जो हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिली।
और अमन जी, इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं जितेंद्र जयपुर से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए।
सर, ये पूछा था कि जो अभी बजट में था कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 थोड़ा कम हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या था, इसको समझाए, जीडीपी के 4.5 क्या है राजकोषीय घाटा, इसको समझाए थोड़ा।
देखिए जी, डेफिसिट होता है, हम जो है एक सरकार होती है बजट, जैसे हम घर में बजट करते हैं कि मैं जो है ये काम करना चाहता हूं, मैं इस बार जो है 10,000 रूपये खर्च करूंगा, पर अल्टीमेटली आप कोई काम करते हैं तो उसमें खर्चा कर देते हैं 12,000 रूपया। अब 2,000 रूपये कहीं ना कहीं से तो आता है, या तो पुरानी सेविंग में से आएगा, या बैंक से लोन लेंगे, या कहीं से आपके पैसा लेंगे, आप क्रेडिट कार्ड पे उठाएंगे, तो वो जो 2,000 रूपये एक्स्ट्रा आपने खर्च किया एक तरीके से वो डेफिसिट हो गया। तो इसी तरीके से हम जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं जो ट्रेड की वजह से आता है, और फिस्कल डेफिसिट कहते हैं जो सरकार के खर्चों की वजह से आता है, जो उन्होंने मापदंड किया होता है कितना खर्चा करेंगे। अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें, हिंदुस्तान का फिस्कल डेफिसिट काफी कंट्रोल तरीके से पिछले 7 या 8 साल हो गए या पूरे वो स्थिरता से कम होता जा रहा है, और इस क्वार्टर के अंदर तो बहुत कम हो गया, जो टारगेट किया था उससे भी उन्होंने कम खर्चा इस बार किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें सरकार की बहुत बड़ी उपस्थिति है, बिकॉज इस बार इलेक्शन पीरियड था तो उसमें खर्चे भी नियमित तरीके से होते हैं, पूरा बजट नहीं होता पिछली सरकार के पास, तो खर्चे उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से वो करना चाहेंगे प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए। पर ये जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर से, जो एक अच्छे मापदंड होने चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर होना चाहिए या शुगर होनी चाहिए इंसान में, वो कंट्रोल मापदंड के दौरान हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को चला पा रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ लेके जा पा रहे हैं। और इसको सिर्फ हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था नहीं, विश्व के, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, OECD हो, ADB हो, सब एजेंसीज सराह रही हैं।
जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कमोडिटीज। ऑयल फ्यूचर्स एक्सटेंडेड लॉसेस इन अ वोलेटाइल सेशन ऑन मंडे एज फियर्स ऑफ अ रिसेशन इन टॉप ऑयल कंज्यूमर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफसेट सप्लाई वरीज स्टेमिंग फ्रॉम माउंटिंग टेंशन इन द मिडल ईस्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन। शेयर मार्केट्स ऑल्सो टम्बल्ड अक्रॉस एशिया एज US रिसेशन फियर्स सेंट इन्वेस्टर्स रशिंग फ्रॉम रिस्क एसेट्स वाइल वेजरिंग दैट रैपिड रेट कट्स विल बी नीडेड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। ब्रेंट क्रूड ड्रॉप्ड 1.8% टू $75.38 a barrel. US West Texas Intermediate crude was down 1.8% at $72.14. Brent and WTI had tumbled more than 3% on Friday, with both contracts marking their fourth straight week of losses, the biggest losing streak since November. Oil also came under pressure from a decision by the OPEC Plus group of producers to stick to its plan to phase out voluntary output cuts from October, which means that supplies will rise later this year. OPEC oil output rose in July despite production cuts by the group. However, oil losses were capped by geopolitical risks in the Middle East. Fighting in Gaza continued on Sunday, a day after an unsuccessful round of ceasefire talks in Cairo. Israel and the United States are bracing for a serious escalation in the region after Iran and its allies Hamas and Hezbollah pledged to retaliate against Israel for the killings of Hamas's leader and a top Hezbollah military commander last week. Aman, oil futures, we have seen that extending losses, but oil prices, whether they, you know, it extends losses, whether they go up or down, everything depends on what's happening in the Middle East, right? And right now the geopolitical situation is such that it's very critical. How do you see, where do you see oil prices going from here?
You see, I don't see too much of a worry on this particular front, specifically because US is in a trouble. US is one of the largest importers of oil around the world, and that has they have the largest reservoir of oil also,
yes,
after the Arabic region, because in the last 30-40 years, what they have done is nothing else but collected oil and kept it. About couple of years back, 2-3 years back, when you saw the prices of oil started rising very high, at that time also US was in trouble, and then they pumped in the money, the oil, into the open market and sold it at a lower rate. And that is something expected to happen even now, because if they want to sustain their economy at the level which they are today, and they want to control this particular crisis which they're going through currently in the last couple of months, and specifically today again, and not see another Black Monday going in their economy, they will have no option but to look at avenues to bring in real money. And real money will be when they sell some of these assets, which will include oil. So even if the Arabic region actually increases the price, there will be a stabilizing factor which will come in from America. And unfortunately or fortunately, no one says anything to America for whatever they do, whether it is good or bad.
Right. And now let's take the next call, which is from Bangalore. One of our regular listeners, N.R. Prasad, is with us. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Just one question on income tax filing. See, the donations made to the charitable trust, now whether it is taken 100% or only at 50% post 23rd July, that is after the revisions made to the budget, during the budget. Just want to know whether, how much the donations made to the charitable trust.
You see,
this is my question.
Yeah, you see, there are the charitable trusts have different categories which are there. Some of them actually have 100% allowance which is there. Some of them have about 50%, and that you will have to see when you give a charitable trust some donation, they issue you a receipt. And they have a ATG certification which is also given there, which will also mention as to what category of charitable activity you are donating to. The Government of India has categorically, the Income Tax Department as well, has categorically defined them into four components. And out of these four components, two have 100% and two have 50%, which are there. It will be better if you are not clear from the receipt and from the organization structure where you are giving donation to, you approach a chartered accountant whom you are dealing with. He will be able to better guide you whether that is coming under the 50% or the 100%. Even that organization may be able to help you and guide you on that.
Aman, I would like to add here that most of the time when we make a donation to a charitable organization, they issue, like you were saying, they issue us a receipt, and the receipt very clearly mentions,
correct,
whether the donation that we have made is, whether that is, you know, 50%, we are going to get a tax benefit of 50% or 100%. So it's always there very clear in black and white for the receipts.
Yes.
And now the next call is from Shivam, who's calling us from Ghaziabad. Shivam, Market Mantra mein swagat hai. अपना सवाल पूछे.
हाँ नमस्कार सर.
नमस्कार.
से बोल रहा हूँ. मेरी सवाल है, जैसे कि मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट बैंक में मुझे एफडी ठीक मिल जाएगी क्या, मुझे गवर्नमेंट बैंक में ही ठीक रहेगी, कहाँ विश्वास मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो अभी मेच्योर हो चुकी है एफडी, मैं सरकारी में है, और इंटरेस्ट जो है ज्यादा है प्राइवेट में मिल रहा है, कृपा करके मुझे बताएंगे.
बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा. पहली बात तो ये समझिए कि सभी बैंकों में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी बैंकों में 5 लाख तक की राशि आपकी सिक्योर्ड में मानी जाती है. तो आप किसी भी बैंक में मल्टीपल अकाउंट, ये नहीं है कि अगर आपके पास 50 बैंक्स हैं, 10 बैंक्स में, आपने 10 बैंक्स में लेके चले आपने अकाउंट खोला है, तो हर एक बैंक के अंदर 5-5 लाख तक की जो आपकी एफडी का अकाउंट है उसका पैसा सिक्योर होता है. आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी इंश्योर की गई है, जो पहले 1 लाख थी, और इस सरकार ने, जो निर्मला सीतारमन जी ने, उसको 5 लाख की बढ़ा के किया है. दूसरी बात, एक बैलेंस करना जरूरी है कि आप कुछ प्राइवेट सेक्टर में रखें, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में. गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ज्यादा नहीं देते हैं, पर एक आरबीआई बॉन्ड्स की स्कीम है, इसी तरीके से कुछ और भी बॉन्ड्स की स्कीम होती हैं जिनके अंदर काफी हाई इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, पर वो आपको लॉक इन करना पड़ता है पीरियड 5 से 7 साल का. अगर आपके पास वो समय है तो फिर आप उसको कर सकते हैं.
और श्रोताओं को बता दें, सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 0.17% घटकर 69,730 रूपये प्रति 10 ग्राम पर थी. वहीं चांदी का मूल्य 1.9% गिरकर 81,240 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर था.
अमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम एंड आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ आवर लिसनर्स.
थैंक यू. नमस्कार.
And before we close, look at the headlines. Indian benchmark indices shed more than 2.5%. Sensex was down 2,222 points. Nifty closed at 24,055. Asian indices experienced major loss. Japan's Nikkei tanked 14.15%. And oil futures extend losses in a volatile session. Brent crude dropped 1.8%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, namaskar.
Namaskar. Market Mantra.